आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को दी मंजूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एनपीएस वात्सल्य योजना का किया शुभारंभ। प्रदेश के 6 जनपदों में बच्चों को पहले दिन जारी किए गए पैन कार्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजियाबाद में 757 करोड़ रुपए की 111 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश के 24 जनपद बाढ़ की चपेट में, 5.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की नई दिल्ली में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, जबकि पंचायत और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रबी सीजन 2024-25 के लिए फास्फेट और पोटाश उर्वरकों पर पोषण आधारित सब्सिडी को भी स्वीकृति दी है। इस पर 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना को जारी रखने को भी मंजूरी दी है। प्रदेश के किसानों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों का स्वागत किया है। सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय तहसील के नदौली गांव के किसान जमील अहमद ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पीएम आशा योजना से किसानों को काफी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री का यह बहुत अच्छा कदम है।
माननीय प्रधानमंत्री जी किसान के लिए बहुत सोचते हैं। पीएम आशा योजना जो है 35,000 करोड़ एक साल में अगर दे कर रहे हैं, दूसरी बात इसमें शुद्धिकरण के लिए दिया गया है, जो किसानों का रेट भी अच्छा मिलेगा और नुकसान होगा तो उसका भी सरकार उससे देखरेख रखेगी और बाजार पे उतार चढ़ाव जो होता है उससे सरकार मिलेगा। आपको कहते हुए प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा कदम है। और क्या किसान सम्मान निधि हो, चैनल ग्रुप का जो है बिजली बिल हुआ, ये सब किसानों के हित में ही देख रहा हूँ मैं।
बरेली के किसान आकिब अहमद ने सरकार के उर्वरकों पर पोषण आधारित सब्सिडी का स्वागत करते हुए कहा कि इससे किसानों को काफी सहायता मिलेगी।
केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में जो उर्वरक सब्सिडी देने की बात की है, सरकार इस पहल से किसानों को रियायती, किफायती और उच्च मूल्य पर उर्वरक मिल जाएंगे। इससे हमें बहुत फायदे होंगे। हम सरकार को धन्यवाद करते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश के 6 जनपदों समेत 75 स्थानों पर इस योजना के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत अयोध्या, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, देवरिया और संभल में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को योजना से जोड़ा गया। इस मौके पर लखनऊ में बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक अमरेंद्र कुमार ने 5 बच्चों को पैन कार्ड दिए। अयोध्या के जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पैन कार्ड हासिल करने वाले बच्चे के अभिभावक हिमांशु ने कहा कि इस योजना से बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा।
ये स्कीम 18 साल के बाद ही शुरू होती है, तब तक ये लॉक इन रहता है या उसके भविष्य के लिए, तो हम 18 साल तक इसमें जमा करेंगे। उसके बाद इस स्कीम की सबसे अच्छी चीज ये है कि 18 साल तक हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं और या तो उसको हम उसकी जरूरत के हिसाब से उसको आगे जो नॉर्मल हमारा एनपीएस जैसे जितनी भी सरकारी संस्था के लोगों को एनपीएस मिलता है उसमें हम उसको कन्वर्ट भी करा सकते हैं। आज की डेट में अगर मैंने इसको एनरोल कराया है या इससे मैं जुड़ा हूं तो मुझे अगर 3 साल बाद अगर मुझे अपने बच्चे के हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ती है तो 25% मुझे इसमें वापस भी मिल जाए। 18 साल तक मैं 3 बार ऐसा कर सकता हूँ।
सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक के तत्वावधान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से योजना के बारे में जानकारी दी गई। एनपीएस वात्सल्य योजना माता पिता को पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने के साथ दीर्घकालिक धन सुनिश्चित करने की अनुमति देगी। एनपीएस वात्सल्य योजना में माता पिता बच्चे के नाम पर सालाना 1,000 रूपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। यह नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है, जो भारत की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजियाबाद में 757 करोड़ रुपए की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र, 6,000 युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन और 632 लाभार्थियों को 357 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का युवा आज डिजिटल माध्यम से दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान 10 जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है, ताकि युवाओं के सपनों को पंख लग सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजियाबाद आज स्मार्ट सिटी बन चुका है। सरकार द्वारा जल्द ही गाजियाबाद में एम्स दिल्ली का एक सैटेलाइट सेंटर बनाने की तैयारी भी की जा रही है।
आज गाजियाबाद के अंदर 12 लेन का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ 12 लेन का हाईवे भी आपके पास है। देश की पहली रैपिड रेल भी आपके पास है। मेट्रो की सेवा भी आपके पास है। एयरपोर्ट की सुविधा भी आपके पास है। और अभी तो हम लोग गाजियाबाद में एम्स दिल्ली के एक सैटेलाइट सेंटर की भी तैयारी करने जा रहे हैं। यहाँ पर गाजियाबाद में एम्स की स्वास्थ्य सुविधाएं इसी गाजियाबाद में प्राप्त होंगी। इसके लिए हम लोग अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा चुके हैं। बहनों और भाइयों, आज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल बनता जा रहा है।
पहाड़ों पर हो रही बारिश और बांधों से लगातार नदियों में पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश के 24 जनपदों में रहने वाले 5.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। गंगा नदी बदायूं, फरुखाबाद, गाजीपुर और बलिया, घाघरा नदी बाराबंकी, अयोध्या और तुर्तीपार में खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं गंगा नदी कन्नौज, कानपुर देहात और कानपुर नगर में खतरे के निशान से महज 0.5 मीटर नीचे है। नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण वाराणसी प्रयागराज में नाव के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। प्रयागराज से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
प्रयागराज में पिछले 5 दिनों से गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि से प्रयागराज के 1 दर्जन से अधिक मोहल्लों में बाढ़ की स्थिति बनी है। साथ ही 100 से अधिक गांव इससे प्रभावित हैं। बाढ़ के मद्देनजर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बोर्ड के स्कूल आज 18 सितंबर को बंद रखा गया है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी क्षेत्रों में जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में कुल 7 जगहों पर अस्थायी कैंप और शरणालय बनाए गए हैं, जहां पर 2,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। खतरे के निशान से गंगा और यमुना का जल 1 मीटर नीचे है। प्रयागराज में खतरे का निशान 84.7 मीटर है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
बहराइच में भेड़ियों के झुंड का आखिरी भेड़िया कल रात वन विभाग के ड्रोन कैमरे में कैद हुआ। ड्रोन में आई भेड़ियों की तस्वीरों के आधार पर वन विभाग की टीमों के साथ ग्रामीणों ने योजना बनाकर उसे पकड़ने के लिए जगह जगह जाल बिछाया है। बहराइच में अब तक 5 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि आखिरी भेड़िये को पकड़ने के लिए प्रयास तेज करते हुए वन कर्मियों को लगाया गया है। जल्द ही इलाके को भेड़िया मुक्त कर दिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को दी मंजूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एनपीएस वात्सल्य योजना का किया शुभारंभ। प्रदेश के 6 जनपदों में बच्चों को पहले दिन जारी किए गए पैन कार्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजियाबाद में 757 करोड़ रुपए की 111 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश के 24 जनपद बाढ़ की चपेट में, 5.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।